ओम शांति। तो आज का विषय है ज्ञान की 21 नई आदतें। हैं तो पुरानी हैं, लेकिन फिर से उनको रिवाइज करेंगे। कुछ नई भी हैं, कुछ पुरानी भी हैं। कहा जाता है धागों का बना रस्सा, उसका टूटना मुश्किल। जो आदत होगी पक्की, उसका छूटना मुश्किल। तो जो आदत है वो स्वतः काम करती है, लेकिन आदत डालने के लिए उसका अभ्यास करना पड़ता है, लंबे समय का अभ्यास, फिर वो आदत बन जाता है। जैसे बचपन से माँ बाप बच्चों को अच्छी अच्छी आदतें डालते हैं, ताकि उनका जीवन जो है निर्विघ्न चलता रहे, उनके जीवन में प्रोग्रेस हो, तरक्की हो, उन्नति हो। तो माँ बाप बच्चों में भी अच्छी अच्छी आदतें डालते हैं, क्योंकि जो बाल मन होता है वो जल्दी सीख जाता है। उसी तरह देखेंगे, एक हाथी है, हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन बचपन से उसको कहाँ बांधा जाता है, एक छोटी सी टहनी के साथ या झाड़ के साथ। हालांकि वो उसको आसानी से उखाड़ सकता है, जो अपनी सूंड से एक टन उठा सकता है, उस हाथी को छोटी सी डाली के साथ बांधते हैं। बच्चा जो होता है उसको नहीं तोड़ पाता है, फिर वो उसके अब चेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है कि मैं तो उसको तोड़ नहीं सकता हूँ, मेरी कोशिश बेकार है। इसलिए फिर जब वो बड़ा होता है, तो बड़ा होने के बाद भी उसी को उसी तरीके से बांधा जाता है। तो माना उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि अब मैं इस रस्सी से छूट नहीं सकता हूँ। वो आदत हो गई, उसके मन में एक आदत पड़ गई है कि ये इसी के अंदर रहना पड़ेगा। इसी तरह हम इस ईश्वरीय मार्ग, ज्ञान मार्ग में अनुशासन के बल पर अगर हम कुछ अच्छी अच्छी आदतें डालेंगे, तो पुरानी जो आदतें हैं जो हमारे पुरुषार्थ को रोकती हैं, या ब्राह्मण जीवन की जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, अगर अच्छी अच्छी आदतें डालेंगे तो निश्चित तौर पर हम पुरानी आदतों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो समय है संगम युग, ये वास्तव में सारे कल्प की जमा करने का आधार है। ये जो भी हम आदतें डालेंगे, ये आदतें वास्तव में सारा कल्प चलेंगे। जैसे बाबा ने दो संडे पहले बताया ना, विधि विधान अभी तुम बच्चे तैयार कर रहे हो, तो ये हमारी आदतें भी एक विधि विधान तैयार कर रही हैं। जिस विधि से हम पुरुषार्थ करते हैं, जिस विधि को अप्लाई करते हैं, वही विधान बन जाएगा। तो जो आदतें हम नए नए निर्माण करेंगे, वही वास्तव में सारे कल्प के हमारे जीवन का आधार बन जाएगा। अगर हमारा निर्विघ्न जीवन रहता है तो सारा कल्प हम निर्विघ्न रहेंगे। अगर संगम पर ही विघ्नों से टकरा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, उतराई चढ़ाई है, तो सारा कल्प भी फिर ऐसे होता चलेगा। इसलिए हमको कुछ नई आदतें अपनी दिनचर्या अनुसार या अपने कर्म क्षेत्र के अनुसार कुछ खुद भी हम निर्माण कर सकते हैं। तो जो हम अभी चर्चा करेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारी आदतें हैं, लेकिन फिलहाल 21 से आते हैं। जैसे उस दिन बताया, सबसे पहली आदत है अमृत वेले। अमृत वेले रोज बाबा से 21 वरदान लेने हैं। उस दिन 21 तिलक बताए थे, तो हम वरदान भी ले सकते हैं। जैसे अमृत वेले उठते ही बाबा से, ऐसा नहीं कि जैसे रात को बताया था कि अमृत वेला हमारा, ऐसा नहीं कि बाबा के कमरे में जाकर शुरू होता है। जैसे हमारी आंख खुली, माना अमृत वेला स्टार्ट है, वहीं से भगवान के वरदान बरसने का समय तभी से चालू है। तो अमृत वेले बाबा से रोज 21 वरदान लेने हैं। वो अपने अपने सुविधा अनुसार हम जितना याद रख सकते हैं, 21 के बजाय 51 भी ले सकते हैं, 101 भी ले सकते हैं, जितना हमको याद रहे। क्योंकि लंबे समय तक हम उसको खींचेंगे तो हमारा योग का जो चार्ट है वो बढ़ता जाएगा, उसमें हम फ्रेश रहेंगे, चार्ज हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा बाबा से वरदान लेने से। तो 21 वरदान कौन कौन से लेंगे? सबसे पहले स्वराज्याधिकारी शक्तिशाली आत्माभव, दूसरा संपूर्ण पवित्र आत्माभव, तीसरा विश्व कल्याणकारी आत्माभव, चौथा लाइट हाउस माइट हाउस भव, ऐसे 21 ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट मास्टर सर्वशक्तिवान भव, मास्टर ज्ञान सूर्य भव, मास्टर ज्ञान का सागर भव। और जो हम वरदान लेते हैं उसके साथ में हमको अनुभव करना है। एक है, पहले तो हमको याद करना पड़ेगा, फिर उसका हमको अनुभव करना है। जैसे स्वराज्य अधिकारी भव, तो बाबा जैसे मस्तक में तिलक भी लगा रहे हैं और ऊपर से वरदान भी दे रहे हैं। जैसे शांति का सागर है, तो सागर है जैसे शांति का सागर है, पानी का सागर ही सामने रख सकते हैं, या एक लाइट का सागर है, उसके अंदर हम डूब जाएं, जैसे एकदम शांति से भरपूर हो जाएं। मास्टर ज्ञान सूर्य भाव, जैसे ज्ञान सूर्य ऊपर से अवतरित तो हो गया और मुझे वरदान दे रहा है, जैसे माथे से वो चिपक गया आगे, वो ज्ञान सूर्य चिपका और मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन गया, तो उससे जैसे सारा आत्मा का जन्म जन्म का कीचड़ा भस्म हो रहा है, तो ये अनुभव करना है। फिर और लाइट हाउस माइट हाउस भाव, जैसे मैं आत्मा भी लाइट हो गई हूँ, बाबा भी ऊपर से लाइट होकर मुझ में सर्वशक्तियों की लाइट भर रहा है, मुझे चार्ज कर रहा है। इसी तरह से और वरदान ले सकते हैं, किस कितने भी करने कर सकते हैं। विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ तो विश्व कल्याणकारी आत्मा बनकर पूरे विश्व का चक्कर लगा रहे हैं, प्रकृति के पांचों तत्वों को हम सकाश दे रहे हैं। इसी तरह बाबा जैसे कह रहे हैं, दानी महादानी वरदानी भव, त्यागी तपस्वी विश्व सेवाधारी भव, मनसा वाचा कर्मणा तीव्र पुरुषार्थी भव, ताज तक तिलकधारी भव, ऐसे सहज रूप से हम जितने भी वरदान हमको याद रहें, तो ये आदत अगर हम डालते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा अमृत वेला जो स्टार्टिंग टाइम है, सारे दिन की जो आधार है, सारे दिन का आधार है, तो हमारा वो चार्ज रहेगा, शक्तिशाली होगा, तो सारा दिन भी हम निर्विघ्न रहेंगे, क्योंकि सवेरे हमने जो आदत डाल दी है वो आदत फिर नेचुरली ऑटोमेटिकली काम करती रहेगी। तो पहला है कि हमको अमृत वेले बाबा से रोज वरदान लेने हैं। वैसे तो उस दिन बाबा ने कहा मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो हमारा अधिकार है, इतना तो बनता ही है ना। और काली था ना, मांगने वाले नहीं, हाँ नहीं, साकार मूल्य में भी था और काल के वरदान में भी था। तो ये पहली आदत है बाबा से किस वरदान लेने। दूसरा है सोमान कहो, वरदान कहो, ये वरदान ही सोमान है, वरदान ही हमारी चेतना में अंदर जो शक्ति है उसको जागृत करते हैं। और दूसरा है फिर एकांत का अनुभव, अर्थात अगर हम संगठन में रहते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो अगर हम अकेले रहते हैं एकांत में भी हमको अपना अकेले का अनुभव करना है, नहीं तो क्या होता है कि फिर हम भले अकेले बैठे लेकिन मन के अंदर जो है अनेक प्रकार के विचारों का संसार बना बसा कर रखा होता है। कई इंसान हमारे मन बुद्धि के अंदर ही चक्कर मारते रहते हैं, तो हमने किसी को पकड़ के तो नहीं रखा हुआ है। उस एकांत में भी एक के अंत में खोने का अभ्यास करना है, वो आदत बनानी है अपने। जब भी हम अकेले बैठे तो अकेले बैठते हुए किसी दूसरे का चिंतन तो नहीं चल रहा है। संगठन में बैठे हैं भले हमारा बाबा की तरफ ध्यान है, ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे हैं, मुरली क्लास में बैठे हैं तब भी हैं, लेकिन जब हम अकेले हो जाते हैं, उस एकांत में हो जाते हैं, भले हम कमरे में बैठे हैं या कहीं हम सर्विस कर रहे हैं, जब हमको सर्विस से मुक्त हैं उस समय, हमको कोई काम नहीं है उस समय, तो उस समय भी क्या हम उस भीड़ भाड़ में अपने को अकेला बनाने की हमारी आदत प्रबल होती जा रही है, क्योंकि अकेले आए अकेले वापस जाना है, तो उस एकांत में भी अपने आप को अकेला अनुभव करना है। नहीं तो पूरा विचारों का अंबार लगा रहता है, बार बार एक के बाद एक, एक के बाद एक, अनेक प्रकार के विचार आते हैं और बाद में देखेंगे उनका सार कुछ भी नहीं है। तो एकांत में भी हमको श्रेष्ठ विचारों का चिंतन करना है, शक्तिशाली समर्थ विचार या ज्ञान योग से संबंधित जो भी विचार हैं उस एकांत में एक के अंत में एक के साथ का अनुभव करना है। तो दूसरा है एकांत का अनुभव की करने की आदत, और तीसरी है अवॉइड करने की आदत। बहुत सारी बातें हमको इस पुरुषार्थी मार्ग में अवॉइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि जितना व्यर्थ हमारे जीवन में आएगा तो हमें पुरुषार्थ का रस नहीं मिलेगा, और अवॉइड हमको उनसे करना मुश्किल होता है जो हमारे नज़दीक साथी संबंधी होते हैं, उनसे अवॉइड करना मुश्किल होता है। जो हमारे जान पहचान वाले नहीं हैं, परिचित नहीं हैं, उनसे अवॉइड करना मुश्किल है, लेकिन जो साथी होते हैं अगर वो कोई इधर उधर की बातें सुनाने लग जाए तो उनको अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। तो भी हमको आदत चाहिए, उसमें हमको शक्ति चाहिए, तो उस समय अगर हम उनको, वो हमारे पास अगर बैठे हैं और उनको हम कह भी नहीं सकते आप यहाँ से चले जाओ, तो हमें एक नई आदत निर्माण करनी है कि उस समय हम उनको ज्ञान में कन्वर्ट करें, ताकि वो धीरे धीरे अगर उसको ज्ञान सुनने की आदत होगी तो बैठ जाएगा, नहीं तो वो अपने आप चला जाएगा, वो हमको अवॉइड करके चला जाएगा। वो तो अवॉइड करने की भी आदत बहुत चाहिए, कहाँ कहाँ गहरी दोस्ती तो नहीं बनती जा रही है, तो डिटैचमेंट जितना हम रहेंगे तो अवॉइड कर सकेंगे। हाँ, जैसे वो आता है टॉपिक चेंज कर देने का, हाँ बाबा के साथ के अनुभव क्या है, या तुम जब व्यर्थ का जैसे अभी चिंतन करने आए ऐसे आप पार से कौन करता है और उससे आपने कैसे मुक्ति पाई तो वो अपने आप समझ जाएगा अपने आप ही। और अगर हमारा उसके प्रति कल्याण की भावना है तो वास्तव में धीरे धीरे वो सचमुच परिवर्तन हो जाएगा। फिर जब भी आएगा तो वो ज्ञान का चिंतन अपने आप ही शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान का चिंतन शुरू कर दे और हम उसको अवॉइड करें, हम अवॉइड नहीं करें यह भी देखना पड़ेगा। तो तीसरी बात है अवॉइड करने की आदत, और चौथा है बार बार बाबा का आह्वान करना, जो पहले भी एक रिपीट हुआ है, लेकिन ये कुछ आदतें हैं जो हमको निरंतर नियमित रूप से डालनी है अपने जीवन में। बार बार बाबा का आह्वान करना है ना, क्योंकि उस आह्वान में जब हम करते हैं तो एक अलग से शक्ति की महसूसता होती है, जैसे अलग से हमारे साथ कोई आ गया है। तो आह्वान करके बाबा से रूहान करनी है, बात करनी है। उसमें हम रूहान क्या कर सकते हैं, जो बाबा हमको मुरली में सुना कर गए हैं, मुरली को रूहान के तरीके से कैसे बाबा आपने हमको आज क्या क्या सुनाया है, आज आपने हमको बैलेंस रखने की कला सुनाई है, बाबा की मुरली रिवाइज, और वो बाबा को रिवाइज करा देना हाँ ये कहा है आपको याद है ऐसे नहीं ऐसा नहीं बोलना है, बाबा को कहना बाबा आप मुझे याद कराते रहना, है ना, मैं भूल जाता हूँ तो आप मुझे रिवाइज कराते रहना। तो ये है रिवाइज वाला पॉइंट आगे आ जाएगा। तो ये है बाबा से रूहान करना, है ना, तो आह्वान करना बार बार और रूहान करना। और चौथा है अशरीरीपन का अभ्यास, क्योंकि जितना हम अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, इस देह से डिटैच होंगे, उतना हम अंतर्मुखी होते जाएंगे। एक है अंतर्मुखता का अभ्यास, वास्तव में अंतर्मुखता अशरीरी बनने का परिणाम है। जितना हम अशरीरी बनते जाएंगे तो संसार की चीजों से स्वतः हमारा मन जो है उस तरफ हमारा मुख जाएगा नहीं। तो यह है अशरीरी बनने की आदत करने से और बहुत सारी बातों से हम डिटैच हो जाते हैं। और अशरीरी बनने की आदत जितना सहज पड़ जाएगी उतना हमारी दूसरी बातों से किनारा स्वतः होता जाएगा, दूसरे हमारा वैराग्य स्वतः बढ़ता जाएगा। वैराग्य बढ़ाने की बात नहीं है, वो वैराग्य स्वतः बढ़ता जाएगा। और ये होगी चौथी आदत, है ना, पांचवी होगी कौन सी, अशरीरी बनने की। और छठी है एक्यूरेसी, जीवन में एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, विशेषकर ब्राह्मण जीवन में, है ना। जो हम घरों में रहते हैं तो वहां देखते हैं कोई चीज अव्यवस्थित अगर रखते हैं, वहां हम देखते हैं एक दूसरे पर जिम्मेवारी डाल देते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं कि मेरी चीज फलानी कहाँ है, होती खुद की है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको अपनी चीज खुद ही संभाल कर रखनी चाहिए, जो चीज हमको जहां रखनी चाहिए वहां मिलनी चाहिए, नहीं तो उसको भी देखने में सोचने में टाइम चला जाता है, कहां ढूंढूं, नहीं तो दूसरे को पूछते हैं और देखा जाता है फिर माहौल बिगड़ जाता है घर में। तो जो चीज हमको जहां रखनी चाहिए वहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी होगी तो उस एक्यूरेसी में ना दूसरे के संकल्प चलेंगे, ना हमारे इतने समय एनर्जी वेस्ट जाएगी, तो उस घर का माहौल भी अच्छा बनेगा। तो एक्यूरेसी विशेषकर ब्राह्मण जीवन में हमको बाबा ने सिखाई है, जो काम जिस समय होना चाहिए उस समय अगर उसका महत्व उसी समय होता है ना, नहीं तो उस दिन बताया ना बस 5 मिनट और, तो बाद में वो 5 मिनट निकल जाते हैं तो आगे बस छूट जाएगी, और बस छूट जाएगी कितना हंगामा हो जाएगा, फिर कितना नुकसान हो जाएगा। हाँ तो फिर वो कितना टाइम चला जाता है। तो ये है जीवन में एक्यूरेसी होना बहुत आवश्यक है, ये भी आदत हमको डालनी है। नेक्स्ट है एप्रिशिएट करने की आदत। आज हर मनुष्य जीवन में क्या चाहते हैं कि हमको कोई एप्रिशिएट करे, हमको कोई सम्मान दे, हमारी कोई महिमा करे, हमें कोई प्यार दे। तो वास्तव में बाबा दाता है, उससे जैसे उदाहरण बताया ना, मांगने की जरूरत नहीं है, हम बच्चे भी दाता हैं। तो ना केवल स्वयं को सम्मान देना है बल्कि सबको सम्मान देना है, सबको एप्रिशिएट करना है आगे बढ़ाने में, क्योंकि सबके अंदर विशेषताएं हैं। और अगर हम एप्रिशिएट नहीं करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं हमारे मन में घृणा भाव बैठा हुआ है, किसी को आगे बढ़ाने के अगर हमारे संकल्प ने, तो वास्तव में हम दूसरों को आगे नहीं बढ़ाने के बजाय हम स्वयं को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हाँ सम्मान देंगे तो घृणा भी कम हो जाएगी उसकी, लेकिन सबसे पहले हमको स्वयं को इतना सम्मान देना है जो दूसरों को हम सम्मान दे सके। सेल्फ रिस्पेक्ट से हमको स्वयं को सम्मान से इतना भर देना है कि दूसरों को देना आसान हो जाए। तो यह एप्रिशिएट करने की आदत, ये हमको भी जीवन में अति आवश्यक है। फिर चौथी है प्रोत्साहित करने की या आगे बढ़ाने की, उसकी जो विशेषताएं योग्यताएं हैं उनकी महिमा करने की, तो ये वाली आदत। नेक्स्ट है जो हम भोजन करते हैं बाबा को भोग लगाने की आदत है। संसार में देखते जो पत्नी होती है वो पति का इंतजार करती है, वो आएगा तो भोजन खाएगा, वो कितनी देर बेचारी भूखी रहती है। लेकिन हमने सोचा भाई इतना भूखा रह सकते कभी, तो माताओं के अंदर कितनी विशेषताएं हैं। तो आजकल की हाँ, तो पहले तो ये भारतीय संस्कृति में था कि जब तक पति घर में नहीं आए तो पत्नी भोजन नहीं करती थी। आज वो संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति की हवाला गई है, तो पति बाहर ही खा के आ जाता है, लेकिन वो पत्नी भी आजकल इंतजार थोड़ी नहीं करती है। हाँ, तो लेकिन फिर भी करवा चौथ के दिन में तो इंतजार करती है ना। करवा चौथ के दिन में भी इंतजार करते हैं। तो माना हम बाबा को याद करके बड़े प्यार से भोग लगा के उसमें उसी भावना से जो पति की पत्नी की पति के प्रति भावना होती है, तो हम उसकी बाबा की हम जो हमारा पतियों का पति है वो हम उसकी पत्नी है, सजनी है, वो हमारा साजन है, तो उतने निष्ठा से उतने प्यार से उसको भोग लगा के भले हम अलग से भोग नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर दो मिनट भी हम भोजन से पहले एक मिनट भी लगाते तो बड़े प्यार से जैसे बाबा सचमुच ऊपर से अवतरित होगी इस भोजन को, पूरी शक्तियां इसमें जैसे भर दी हैं, ये भोजन जैसे अमृत बन गया, दुख भंजन बन गया है, ये भोजन खाने से जैसे हमारी सारी मन और तन की सारी बीमारियां जैसे नष्ट हो रही हैं। तो बाबा को बड़े प्यार से भोग लगाने की आदत डालना ये भी मासी का घर नहीं है, ये लंबे समय का अभ्यास होता तो ही डलता है। नहीं तो कई भी कई होता है कि बैठे हैं और सीधा कई बार देखा है भोजन आया उन्हें तुरंत मुख में, अर्थात हमने अपनी आदत बदली नहीं है अभी। तो ब्राह्मण लाइफ में हमने कदम रखा है तो अपनी आदतों को बदलने के लिए कुछ तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो जो भी हम भोजन खाते हैं, जब भी खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, तो बाबा को बड़े प्यार से एक मिनट भी बड़े बड़े प्यार से याद करके स्वीकार करा के उसको अगर हम स्वीकार करेंगे तो वो भी एक शक्ति का काम करेगी, तो भी हम इस पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हाँ, टोली भी तुरंत नहीं खानी, जो भी हमको क्लास में मिलती है ये भी एक अच्छी आदत है, टोली को जो तुरंत मिलती है तुरंत मुख में, चलते चलते खा रहे हैं वो भी नहीं, जेब में खराब होती नहीं, तो हाथ में जहाँ जो मिलती है पकड़ के फिर डिपार्टमेंट में जाके खाओ। कई तो टोली का कितना उसका आदर सत्कार करते हैं, थोड़ी सी टोली होती है माताएं घर को ले जाती हैं, थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के वहां जाके खिलाती है, उसका कितना महत्व होता है। हाँ एक हाँ वो उन्होंने कि एक बूंदी का पैकेट एक महीने तक चलाया उन्होंने, बताओ तो कितना उसका महत्व है। तो वास्तव में कहीं ना कहीं इन चीजों का अगर हम महत्व कम करते जाते हैं तो हमारे लिए वो नुकसानकारक होता है। तो जितना हम इस चीज को काणा दाणा यज्ञ का जो भी है उसको हम महत्व देते हैं, उसको भोग समझ के खाते हैं, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है तो हमारे लिए हितकारी है वो। तो ये है भोग लगा के खाने की आदत। नेक्स्ट है मीठा बोलने की आदत। आज की मुरली में भी वरदान है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, व्यर्थ करने वाले या डिस्टर्ब करने वाले बोलने वाले हो, क्योंकि बोल ही पूरी महाभारत खड़ी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा हमको जो बोल है हमारे सहमित होने चाहिए, कहाँ हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसकी भी हमको इतनी अनेक प्रकार की क्लासेज मिलती हैं बाबा की, अव्यक्त महावाक्यों में इतने ऊंचे ऊंचे हमको मार्गदर्शन मिलता है, या क्लासों में भी या संगठन में जब हम आते हैं तो सबको वास्तव में हमको वाच जो हम करते हैं एक दूसरे को देखते हैं तो विशेषताएं देखनी है कि कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ऐसा नहीं कि हमारे बोल से ऐसे मुख से ऐसे बोल निकल जाएं, कटाक्ष हो, दूसरे के दिल को छेद कर दें, या दूसरा हमारे से किनारा करना शुरू कर दे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें देखने से दूसरा जैसे कतराता है, साइड किनारा करता है, और कई बार सामने वाले को पुरुषार्थ के बोल भी खराब लगते हैं। तो सामने वाले को हमको ये भी परखना है इसको अच्छी बात आप बोलनी है नहीं बोलनी है, कई बार सामने वाले को अच्छी बात भी खराब लगेगी क्योंकि उसका मूड उसका परखना पड़ेगा। तो वो मूड परखने के बाद ही हम उसको क्या बोलना है क्या देना, तो अगर हम सही देंगे तो हमारा बोल सार्थक होंगे, नहीं तो बोल ही कहीं ना कहीं हमारे भारी पड़ जाते हैं। तो यह है मधुर बोलने की आदत, मीठा बोलने की आदत। नहीं तो हाँ जी हाँ बहुत मीठा बोलते हैं, हमने कई बार देखा है कोई कोई पुरुषार्थ भले बहुत थोड़ा ही करते हैं लेकिन इतना मीठे बोलते हैं कि उससे जैसे दिल पिघला देते हैं दूसरे का। वो बहुत थोड़ा पुरुषार्थ कर देखने में ऐसे आता है कि बहुत थोड़ा पुरुषार्थ कर लेकिन बोल इतने मीठे हैं सामने वाला फिदा हो जाएगा उनके ऊपर। तो ये बोल का कितना महत्व है, जैसे जीवा के ऊपर कौन बसनी चाहिए, सरस्वती, ऐसे साक्षात्कार सरस्वती, क्योंकि जो बाबा के संस्कार है वो ही तो हमारे मुख से निकलने चाहिए ना, वही बोल हमारे मुख से निकले, दूसरों को शांति प्रदान करने वाले, दूसरों के दिल को जैसे राहत दे रहे हैं। तो ये है कौन सी आदत, मधुर बोलने की आदत। कितनी हो गई, नौ हो गई। नेक्स्ट है भाषण करने की आदत, ये भी बहुत जरूरी है। अगर भाषण करने की आदत है तो उसको फिर और रिफाइन करने की आदत, अगर रिफाइन भी है तो उसमें रूहानियत भरने की आदत, अगर रूहानियत भी है तो जो हम भाषण कर रहे हैं उसको अनुभव कराने की आदत है ना, जैसे कराते हैं सचिन भाई कराते हैं जैसे तो ये हमको भाषण में भी दिन प्रतिदिन ये हमको एक इतना अच्छा मौका मिलता है तो हमको मना नहीं करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आदत है बहानेबाजी करने की आदत नहीं डालनी है। जो भी हमको होमवर्क मिलता है मना नहीं करना कभी भी, क्योंकि अगर हम जैसे मना कर देते हैं तो मना नेगेटिव एनर्जी जाना अंदर में शुरू हो जाती है, फिर हम सारे दिन में हल्के रहेंगे। नहीं तो अगर थोड़ा अगर हमको होमवर्क मिलता है कम से कम थोड़ा तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, अगर नहीं हम लेंगे तो हमारी एकाग्रता और थोड़ी बहुत ही ना वो भी खा जाती रहती है। हाँ व्यर्थ से मुक्त होते हैं, नींद फिट जाती है, निंद्रा चित्त बन जाते हैं, है जी, ज्यादा एकाग्रता बढ़ जाती है। हाँ तो ज्यादा होमवर्क देंगे भी आपको, तो जो भी हमको होमवर्क मिलता है जो भी जवाबदारी मिलती है सेवा में उसको हम बहानेबाजी से अब इग्नोर नहीं करें, क्योंकि कई बार होता है कि हम व्यर्थ बातों से इतना हमारा लगाव होता है, अटैचमेंट होती है कि इसके करने के बजाय हमारा उसकी तरफ ही आकर्षण है, उसको जैसे उसको देख के हमारा जैसे कर्मेंद्रियां संतुष्ट हो रही हैं, तृप्त हो रही हैं। तो इनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमको बहानेबाजी की आदत से मुक्त होना पड़ेगा, तो हम इस ज्ञान मार्ग का सुख अनुभव कर सकते हैं। तो बहानेबाजी की आदत से मुक्त, ये कितना हो गया 11। नेक्स्ट है चुप रहने की आदत, मैं चुप रहूंगी, एक चुप सौ सुख, है ना। हाँ कई बार दो व्यक्ति बोल रहे होते हैं हम बीच में एंटर प्रवेश कर जाते हैं तो वो भी खराब बात होती है ना। तो कहाँ कहाँ हमको चुप भी रहना पड़ता है, जितना हम चुप रहेंगे, साइलेंस में रहेंगे, मौन में रहेंगे, हमारी शक्तियां बचत हो रही हैं, है ना, दूसरे की भी, और दूसरा भी हमको अच्छा मानेगा, दूसरे के मन में भी हमारे प्रति अच्छा दृष्टिकोण होगा। नहीं तो एक्स्ट्रा बोलते रहेंगे हमारी शक्तियां क्षीण होती जाएंगी दिन प्रतिदिन। तो चुप रहने की आदत। नेक्स्ट है चिट्ठी लिखने की आदत, बाबा को खत लिखने की आदत, या उसको कह सकते हैं चार्ट रखने की आदत। अगर हम चार्ट लिखते नहीं है तो कम से कम हमारे मन में तो है ना कि सारे दिन में हम क्या क्या कर रहे हैं, वो चार्ट रखेंगे, बाबा को लिखेंगे, खत लिखेंगे। वैसे चिट्ठी लिखने की आदत चार्ट से भी अच्छी होती है। हमने जो ज्ञान मार्ग में जब हम चले थे तो बाबा को हम चिट्ठी लिखते थे, उस समय तो चिट्ठी में सारा चार्ट ही आया था, और चिट्ठी लिखते लिखते जैसे बहुत प्रेम बरसता था उस समय, क्योंकि लिखते थे, अब तो लिखता नहीं, मैं लिखूंगे दोबारा, कभी कभी लिखते हैं हम, डेली नहीं लिखते। तो चिट्ठी लिखने की या चिट्ठी में क्या अपनापन होता है, आप देखो पहले जमाने में चिट्ठियां लिखते थे तो चिट्ठी घर में जब जाती थी तो उसको बार बार पढ़ते थे, है ना, उसमें एक स्नेह भरा होता था, उसमें हाथ स्पर्श होते थे, उसकी खुशबू होती थी, जैसे माँ बाप उसको बार बार देखते थे। और अभी क्या SMS करते थे, उसको देखता भी नहीं कोई भी, अभी हाईटेक हो गया, एक बार ही देखते हैं, दोबारा नहीं, हाँ उसका जवाब का इंतजार तो करते हैं, लेकिन जो चिट्ठी का महत्व था पहले, है ना, तो वो उसका बहुत महत्व था। तो बाबा को हमको बड़े प्यार से चिट्ठी लिखनी है, चार्ट रखना है, वो एक हमको आदत डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कंट्रोल, स्वयं पर नियंत्रण, चाहे वो स्वयं के कर्मेंद्रियों पर है या स्वयं के इच्छाओं पर है, जो भी तृष्णा है, जो बाबा ने कल कहा मृग तृष्णाओं के समान हमारी इच्छाएं बढ़ती तो नहीं जा रही हैं, इच्छाएं क्या करने वाली है, कल था इच्छाएं रुलाने वाली हैं, वो आकर्षण में बांध देती हैं। तो हमको स्वयं के ऊपर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना है। नेक्स्ट है बाबा की कंपनी में रहने की आदत, है ना, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो, नजर नहीं आते, तो बार बार जैसे अनुभव करना जैसे बाबा मेरे साथ साथ चल रहा है, तो बाबा की कंपनी में रहने की आदत है। नेक्स्ट है बाबा से कंबाइंड रहने की आदत, ये जितनी भी आते हैं, कोई ज्ञान से रिलेटेड है, कोई योग से रिलेटेड है, कोई धारणा से रिलेटेड है, तो बाबा से कंबाइंड रहने की आदत, बार बार परम धाम में जाने का, बाबा से कंबाइंड हुए, शक्तियों से फुल चार्ज हुए, फिर वापस अपनी देह में, फिर ऊपर, या बाबा ऊपर से नीचे आके मुझ आत्मक से कंबाइंड हो गया, तो बाबा के साथ कंबाइंड रहने की आदत है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव, सहयोग देने की आदत, अगर हम समय पर किसी को सहयोग देते हैं तो उसमें जो दुआएं निकलती हैं उसके मन से, उसके जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं हमारे पुरुषार्थ को बहुत सरल बना देती हैं। चाहे कोई भी है, चाहे कोई ज्ञान में चलता है या नहीं चलता है, क्योंकि पूरा संसार अपना ही परिवार है। हमको कहीं ना कहीं ऐसा भी भेदभाव नहीं करना है कि ज्ञान में या नहीं है। अपनी क्षमता अनुसार हम जितना किसी को सहयोग दे सकते हैं सहयोग देना है, मर्यादा पूर्वक, नियम पूर्वक। हाँ, बाबा ने उस दिन कहा तुम बेहद के कुल के दीपक हो, आज ही है। हाँ, तुम बेहद के कुल के दीपक हो। पूरा संसार हमारी जगमगाती हुई रोशनी से चल रहा है, तो अगर हम किसी को जो रोशनी दें किसी को नहीं दें तो भेदभाव हो जाएगा ना। जैसे बाबा का सबके प्रति कल्याणकारी अंदर दृष्टिकोण रहता है, तो हम भी उसके बच्चे हैं, तो सबके प्रति, चाहे हद में या माना कोई ज्ञान में या नहीं है, सबके प्रति हमारा सहयोग की भावना रहनी चाहिए। कितना हो गया? 17 हो गया। फिर नेक्स्ट है रिवाइज करने की आदत। ये जो सारा सुना ना, इसको रिवाइज करना है अभी या जो यहां सुनते हैं हाँ डबल हो जाएगा। तो कोई भी ज्ञान के या कोई भी क्लास होती है, या मुरली क्लास में बैठते हैं, तो मुरली क्लास में कौन कौन से हमने ज्ञान से, जैसे कल था दैवी गुण धारण करने चाहिए, खाड़ी चैनल पार करना है, तुम्हें ऑलमाइटी बाप आकर ताकत भर रहे हैं, माइट भर रहे हैं, तुम्हें इच्छा मात्र विद्या बनना है, ये सारी चीजें, या पहाड़ को रुई कैसे बना रहे, तो हमको रिवाइज करना है बार बार इसको, है जी। तंग नहीं करना है किसी को, तंग नहीं करना है। तो ये सारी बातें बार बार रिवाइज करेंगे तो पक्की होती जाएंगी। और केवल आज की नहीं, किसी, है जी, कब करनी है, हमेशा करते रहना है, छोड़ना ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है तंग करने की आदत पक्की होगी नहीं, तो अगर तंग किया तो वो आदत पक्की हो जाएगी। हाँ, तंग करना है माया को, तंग करने की आदत नैले पे देला नेक्स्ट है साक्षी दृष्टा स्थिति बनाने की आदत, या साक्षी होकर देखने की आदत। क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा के अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, तो उसको, उनके प्रति हम कल्याण की भावना रख सकते हैं, लेकिन उसको देख के विचलित भी नहीं होना है। किसी का पार्ट हमारे से बहुत श्रेष्ठ है, तो उसको भी हमको साक्षी होकर देखना है। हर हाँ विचलित माना हलचल में नहीं आना है, हाँ ईर्ष्या नहीं करनी है, अचल अडोल रहना है। जितना हम साक्षी अवस्था बनाएंगे उतना हमारी स्थिति अचल अडोल बनती रहेगी। क्योंकि बाबा ने कहा इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, उसी अनुसार पार्ट प्ले कर रहे हैं, हर कल्याणकारी है। तो साक्षी दृष्टा की अवस्था जो है, ये भी हमारी स्थिति को मजबूत करेगी। ये भी एक आदत, हमको दिन प्रतिदिन इसको मजबूत करते जाना है। और नेक्स्ट है एक्सरसाइज करने की आदत। एक है मन की एक्सरसाइज, वो भी है, लेकिन एक बॉडी की एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। थोड़ी बहुत करना तो जरूरी है, वॉकिंग या एक्सरसाइज, प्राणायाम, क्योंकि अगर हमारी बॉडी ठीक नहीं है तो बार बार खींचेगी वो। तो समय अनुसार हमको 10-15 मिनट निकाल के जितना भी समय हो उसका अभ्यास करना है। और लास्ट में है कौन सी होगी, हाँ, और वो है गीत गुनगुनाने की आदत। गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है। कई बार अगर ज्ञान का चिंतन नहीं चले तो ज्ञान सुनो, नहीं तो अपने गीत गाते रहो। वो देखा हमने, कई बार गीत गाने से हमारा मन जो है ना बड़ा हल्का हो जाता है, एकदम लाइट हो जाता है। तो ये 21 आदतें थी जो हमको अपने जीवन में धारण करनी है। तो सबसे पहले आदत कौन सी थी, अभी आप सुनाएंगे। अमृत वेले क्या करना है, बाबा से वरदान लेने हैं। और दूसरी आदत एकांत की आदत। एकांत में भी हम अकेले रहे, एकांत के एक ही अंत में खो जाए, उसमें कोई भीड़ भाड़, हमारे मन के अंदर कोई भीड़ तो नहीं लगी हुई है। तीसरी अवॉइड करने की आदत। चौथी आह्वान करने की आदत, बाबा का आह्वान करने की आदत बार बार। और पांचवी अशरीरी बनने की आदत, उससे अंतर्मुखी स्वतः बनते जाएंगे। छठी एक्यूरेसी। सातवी एप्रिशिएटिव। और आठवीं भोग लगाने की आदत, नहीं तो वो शेर भी भोग लगाता ना, कौन सी कहानी सुनाई थी बोला मैं अभी आपका भोग लगा रहा हूं, भूल गया ही हूं। और नेक्स्ट आठ नौवीं और दसवीं मीठा बोलने की आदत, आठवीं नौवीं भाषण करने की आदत, दसवीं बहानेबाजी से मुक्त होने की आदत, करने की आदत नहीं, बहानेबाजी से मुक्त होने की आदत। हाँ, और ग्यारहवीं, ये बारहवीं आ गए, चुप रहने की आदत। और नेक्स्ट चार्ट या चिट्ठी लिखने की आदत। नेक्स्ट स्वयं पर नियंत्रण, कंट्रोल करने की आदत स्वयं को। और नेक्स्ट बाप की कंपनी में रहने की आदत, नेक्स्ट कंबाइंड रहने की आदत, नेक्स्ट कोऑपरेटिव सहयोग देने की आदत, नेक्स्ट रिवाइज करने की, कौन सी रिवाइज करना, ये जो सारा समय इसको रिवाइज करने की आदत, नेक्स्ट साक्षी होकर रहने की आदत, उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज, और लास्ट में गीत गुनगुनाते रहना। ओम शांति।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे,
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे,
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे,
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे,
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। खुश रहता और खुशी बांटता,
निर्मोही के तौर करेंगे,
निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे,
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे,
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।